ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक से पार्टी की वार्षिक कार्य योजना हुई पारित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भाद्र 31 गते को प्रतिनिधि सभा बैठक को करेंगे संबोधित। बागलुंग में हुई वाहन दुर्घटना में रुकुम पूर्व की पुथा उत्तरगंगा गांव पालिका के उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों की हुई मौत। और यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने को लेकर चल रही चर्चा के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के साथ रूस के युद्ध के खतरे की दी है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भावी प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की जाने वाली सिफारिश को विवाद रहित बनाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन और विचार विमर्श को जरूरी ठहराया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई बैठक में सहभागी सदस्यों ने परिषद के निर्णय को विवाद रहित बनाने के लिए निर्णय से पहले पर्याप्त अध्ययन और विचार विमर्श करने का सुझाव दिया था। परिषद की भाद्र 31 को होने वाली बैठक इस विषय में आवश्यक निर्णय लेगी, ये बात उपसभामुख इंदिरा राणा ने बताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के विपक्षी दल के नेता और उपसभामुख सहभागी थे। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक ने पार्टी महासचिव शंकर पोखरियाल द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना को पारित किया है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय चैसल में बुलाई गई बैठक में मजबूत राष्ट्रीय शक्ति निर्माण के लिए एमाले की वार्षिक कार्य योजना को पारित किया गया। नेकपा एमाले ने पार्टी को एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और मिशन 2084 में सफल होने के लिए 18 सूत्रीय वार्षिक कार्ययोजना बनाई है और कार्ययोजना के अनुसार पार्टी की सभी समितियां अब संगठित होंगी। ये जानकारी बैठक के बाद नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरियाल ने दी। बता दें कि इससे पहले भाद्र 18 और 19 गते को हुई नेकपा एमाले पॉलिट ब्यूरो की बैठक में भी राष्ट्रीय शक्ति निर्माण के लिए वार्षिक कार्ययोजना पारित की गई थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भाद्र 31 गते को प्रतिनिधि सभा बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रसंघीय महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा बैठक को संबोधित करेंगे, ये बात नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक महेश बर्तोला ने बताई। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली आगामी आश्विन 4 गते को अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्य सचेतक बर्तोला ने बताया कि महासभा में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो मुद्दे उठाएंगे उनके बारे में वे संसद को अग्रिम जानकारी कराने वाले हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के वरिष्ठ महिला चिकित्सकों को सम्मानित किया। नेपाल चिकित्सक संघ द्वारा वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल 2024 अंतर्गत राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने 10 महिला चिकित्सकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड अंतर्गत डॉ रीता गुरुंग, डॉ शांत कुमारी सापकोटा, डॉ हीरा तुलाधर, डॉ गीता सायमी और डॉक्टर कल्पना सुवेदी उपाध्याय शामिल हैं। वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अंतर्गत डॉक्टर सुनीता आचार्य, डॉक्टर सुधा खकुरेल, डॉक्टर विमला लाखे, डॉक्टर मालती त्रिपाठी और डॉक्टर अंबिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। सरकार ने नवनिर्मित धरहरा को अंतरिम रूप में संचालित करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंहदरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इस बात की जानकारी दी। बैठक ने दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत ट्रांसमिशन तथा वितरण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले अनुदान और सहूलियत दर पर ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए नेपाल सरकार की ओर से एशियाई विकास बैंक से वार्ता करने के लिए अर्थ मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में वार्ता टोली गठन करने का निर्णय किया। इसी तरह बैठक ने हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत चितवन राष्ट्रीय निकुंज के भीतर आने वाले राजमार्ग के मौजूदा रेखांकन को संशोधित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति देने और गलछी त्रिशूली मैलुंग सैफ्रुबेसी रसुआगढ़ी सड़क के सैफ्रुबेसी बाजार खंड में 11 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण करने की सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय किया। बैठक ने विभिन्न निकायों के लिए 1050 अस्थायी दरबंदी भी स्वीकृत की है। इसी तरह बैठक ने इन्वेस्टमेंट बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद पर सुशील गेवाली को नियुक्त करने के साथ ही विभिन्न अधिकारियों के तबादले लगाए कई अन्य निर्णय भी किए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G। भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G।
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G। आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था अनुसार कानून में समय सापेक्ष सुधार होना जरूरी है। आज काठमांडू में आयोजित रेडियो प्रसारक संघ अकोराप की 18वीं साधारण सभा एवं 8वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में संचार मंत्री गुरुंग ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बहुदलीय व्यवस्था होते हुए गणतंत्र में आ चुकने के बावजूद पंचायतकालीन कानून के ही भरोसे काम करने से समस्याएं आ रही हैं। कोशी के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने आज मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों और 1 राज्य मंत्री को शामिल करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कोशी प्रदेश के प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने आज नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री भूपेन्द्र राय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मंत्री खगेन्द्र सिंह हंगाम और पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री सदानंद मंडल को शपथ दिलाई। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्की ने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री भूमि प्रसाद राजवंशी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर गहरा दुख जताया है। सामाजिक संजाल एक्स पर प्रधानमंत्री ने महासचिव येचुरी के निधन पर संवेदना जताई है। बता दें कि महासचिव येचुरी का 72 वर्ष की उम्र में कल एम्स अस्पताल नई दिल्ली में निधन हो गया। 60वें राष्ट्रीय बाल दिवस के संदर्भ में आज रेडियो नेपाल और बाल संगठन के सहयोग में बाल गीत प्रतियोगिता 2081 आयोजित की गई। काठमांडू के नक्साल स्थित बाल मंदिर में आयोजित बाल गीत प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने रेडियो नेपाल और बाल संगठन के बीच सहयोग जारी रखने की बात पर जोर दिया। मौके पर रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि रेडियो नेपाल और नेपाल बाल संगठन के सहकार्य से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के भविष्य को उजागर करने में मदद मिलेगी। बता दें कि बाल गीत प्रतियोगिता में 18 समूहों में बच्चों ने भाग लिया। राष्ट्रीय बाल दिवस हर साल भाद्र 29 गते को मनाया जाता है। इस वर्ष का बाल दिवस का नारा है, बच्चों में निवेश एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत। बागलुंग में हुई वाहन दुर्घटना में रुकुम पूर्व की पुथा उत्तरगंगा गांवपालिका की उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आज सुबह काठमांडू से रुकुम पूर्व जाती हुई सरकारी जीप बागलुंग की गलकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 2 भूंगखानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में पुथा उत्तरगंगा की उपाध्यक्ष 33 वर्षीय भूपेन्द्रा बुढ़ा, उनकी 61 वर्षीय मां गोपी माया बुढ़ा और उसी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष 37 वर्षीय जस बहादुर सिरपाली की हुई मृत्यु की जानकारी पुलिस ने दी। हादसे में जीप चालक भूमे गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 29 वर्षीय प्रेम बहादुर पुन घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जीप सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गिर गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। भूस्खलन के कारण 2 दिनों से अवरुद्ध रही कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत की सुर्खेत जुमला सड़क संचालित हो गई है। नेपाली सेना और अमेरिकी सेना के बीच इसी भाद्र 30 गते से आश्विन 4 गते तक पैसिफिक एंगल संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। काठमांडू, मकवानपुर और धादिंग में होने वाले अभ्यासों में आपदा के समय में किए जाने वाले खोज और उद्धार संबंध में अनुभव आदान प्रदान होगा। ये जानकारी नेपाली सेना के प्रवक्ता सहायक रथी गौरव कुमार केसी ने दी। बारिश और बिजली गिरने के कारण बैतड़ी में 33 और 11 केवी प्रसारण लाइन में विभिन्न क्षेत्र में समस्या आने के कारण बीते बुधवार से विद्युत सेवा अवरुद्ध है। ये जानकारी दोगड़ा केदार गांवपालिका वार्ड नंबर 3 श्रीकोट के गणेश पिष्ट ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने को लेकर चल रही चर्चा के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो के साथ रूस के युद्ध के खतरे की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप और अमेरिका ने कीव को लंबी दूरी की मिसाइल से रूस के अंदरूनी हिस्सों में हमला करने की इजाजत दी तो नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी बीच रूसी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मॉस्को ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने कहा कि उनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा थीं। पुतिन ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि इसका मतलब होगा यूक्रेन जंग में नेटो देशों यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सीधी भागीदारी। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि इस जंग को रूस ने छेड़ा था और वो इसे तत्काल बंद कर सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक से पार्टी की वार्षिक कार्य योजना हुई पारित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भाद्र 31 कते को प्रतिनिधि सभा बैठक को करेंगे संबोधित। बागलुंग में हुई वाहन दुर्घटना में रुकमपूर्व की पुथा उत्तरगंगा गांवपालिका की उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। और यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने को लेकर चल रही चर्चा के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के साथ रूस के युद्ध के खतरे की दी है चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।